नमस्ते। अब वैसे तो कुछ बोलने को बचा नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं। कल एक ऐसा मैच हुआ जिसको देखने के बाद मेरा ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे अंदर से मेरी जो एक खुशी होती है ना, हमारे शरीर में कई ऐसे हिस्से होते हैं जो कुछ ऐसे हार्मोन्स को पैदा करते हैं, उनको उनका संचालन करते हैं, जिनसे हमारी बॉडी को पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच मिलने का, सोच पाने का एक जरिया मिलता है। कल का मैच देखने के बाद लगता है वो हार्मोन मेरे अंदर से है ना जा चुका है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इस टीम ने कल खेला है ना, मेरा दिल पहले ही हाफ में टूट गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सेकेंड हाफ देख भी पाऊं। डर लग रहा था कि कहीं वही फीफा वाली हरकत ना हो जाए कि जब हम एमेच्योर या ये आपके क्या कहें, एमेच्योर लेवल पे ही हम ऐसे खेलते हैं किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट तो 7-8 गोल मार देते हैं। वो हाल किया है मैन सिटी ने हमारा। अब इसमें मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे किसी का ना साइड लूंगा, ना मैं मैनेजर को कुछ मतलब वो दूंगा कि उसको मैं डिफेंड करूंगा, ना मैं प्लेयर्स को डिफेंड करूंगा, और ना मैं बोर्ड को छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी दिक्कत बोर्ड से है। बोर्ड को यह समझना चाहिए कि जब तक आप अपने कोच की हर उस डिमांड को नहीं सुनोगे कि उसको कौन से प्लेयर चाहिए, उसको कौन से नए प्लेयर नहीं चाहिए, कौन से प्लेयर नहीं चाहिए मेरा मतलब, तब तक वो टीम कभी चल ही नहीं सकती। और मॉरिसियो सारी को मेरा बस एक ही सजेशन है, भाई साहब ये जो सिलेक्शन आप करते हो ना टीम में, स्पेशली एक बंदे को लेकर, मार्कोस अलोंसो, आप प्लीज बंद कर दो। एमर्सन इससे कई गुना अच्छा खेल लेगा। फिर लोग बोलेंगे कि अरे एमर्सन के अंडर तो बोर्नमथ ने तो 4 गोल मारती है। ठीक है, वो 4 गोल मारे, लेकिन एटलीस्ट वो एफर्ट तो डालता है, एटलीस्ट वो काम करता तो है। अब चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें थोड़ी उम्मीद थी कि हम एक दो कोशिश करेंगे कि कम से कम ड्रॉ लेके जाएंगे एटिहाड से, लेकिन चौथे मिनट से ही मैनचेस्टर सिटी ने हमें पेलना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से। पहले स्टर्लिंग का गोल, फिर अगुएरो का तगड़ा वाला गोल, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या करे तो करे क्या, भरे तो भरे क्या। फिर उसके बाद दे दनादन 2 और गोल हो गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब उस वक्त डिफेंस की जो हालत हो गई थी ना, डिफेंस तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तो है ना पार्क में आए हुए बस टहल रहे हैं। मतलब एक डेडिकेशन होता था ना एक जमाने में चेल्सी की टीम में कि उन चाहे अपना शरीर दांव पे लगा दो, चाहे तुम बिल्कुल तुम पिच पे खून बहा दो या थूक दो, तुम्हारा ये इंटेंट होता था कि कम से कम तुम अपना एफर्ट तो डालो पिच पे। पिच पे तुम एफर्ट डालते थे, वो कोशिश करते। मुझे अभी भी एक गेम याद है, शायद 2013-14 का एक गेम था साउथहैम्पटन के साथ चेल्सी का, तब हम 1-0 डाउन थे, फिर हमने 3-1 से कमबैक करके वो मैच जीता था। तब साउथहैम्पटन के एक प्लेयर ने शॉट लिया था और कम से कम 3 चेल्सी प्लेयर थे जिन्होंने लिटरली डाइव मारी थी उस शॉट को रोकने के लिए। वो 3 प्लेयर थे, इवानोविच, एस्पिलिक्वेटा और जेटी। अगर ये थोड़ा सा भी अगर ये उस टाइप की डेडिकेशन अगर अभी की स्क्वाड में प्लेयर दिखा दे, 5% ही बोलूंगा, अगर उससे भी ज्यादा दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कल का मैच देखने के बाद तो मेरे अंदर एक अलग ही गुस्सा था। मतलब मैं उस बैंगलोर में बैठे उस गधे की तरह चीख चिल्ला के अपने क्लब को गाली नहीं दूंगा। मुझे पता है कहां पे क्या बोलना है, कहां पे क्या नहीं बोलना है। मैं किसी एक बंदे की साइड लेके दूसरे को बिल्कुल ही मैं बस के नीचे फेंकने वालों में से नहीं हूं। गलती सबकी है, गलती हर किसी उस बंदे की है जिसने इस मैच के लिए जरा सी भी तैयारी नहीं की। अब वो लोग भी आएंगे, ये बोलेंगे अरे कॉन्टे के टाइम पे तो हम 1 गोल से हारे थे। अरे भाई, कॉन्टे के टाइम पे, मैं उस बंदे की दिल से इज्जत करता हूं और अभी भी ये कहता हूं, कहने की क्या बात है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, वो हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस आदमी को मैं हमेशा थैंक्स बोलूंगा। जो हुआ सारी बोर्ड की गलती थी, लेकिन उस मैच में हम तो शुरुआत से ही ऐसे हो रहे थे कि ठीक है चलो कोई नहीं, अच्छा कुछ नहीं करना। इस मैच में एफर्ट डाला, लेकिन कब डाला, जब हम ऑलरेडी वो मैच हार चुके थे। मैच खत्म होने से पहले हम मैच हार चुके थे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम कोशिश करते हैं, जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं, एक ना एक रिजल्ट ऐसा आता है जो, और ये रिजल्ट तो शायद बहुत ही बुरा था, मतलब 1979 के बाद से हम इतनी बुरी तरह किसी टीम से प्रीमियर लीग में नहीं हारे, मतलब हो क्या रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। पहला गोल खाया, लगा कि यार अब थोड़ा वो थोड़ा डेडिकेशन जागेगी, कुछ करेंगे, फिर एक उनका एक काउंटर होता दे दनादन, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सेकंड हाफ में सोचा कि यार थोड़ी बेइज्जती कम होगी, एक गोल भी नहीं पड़ने देंगे, तब थोड़ी अक्कल आई होगी, सारी ने इनको सूता होगा अच्छे से, इनको सुनाया होगा अच्छे से, कुछ नहीं हुआ। इस टीम ने उल्टा अपनी और बेइज्जती कराई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खेल रहे थे कि टहल रहे थे कि क्या कर रहे थे। अब हर प्लेयर की बात की जाए, केपा, केपा को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो 6 के 6 गोल एक कंप्लीट टीम वर्क का, टीम वर्क की गलती थी। अगर वो थोड़े से एफर्ट उस वक्त गोल को रोकने के लिए कर दिया होता तो ये चीज होती नहीं। पर हाँ, कहीं ना कहीं कीपर भी लपेटे में आता, भैया बंदे ने एक मैच में, 2 मैचेस में 10 गोल खा लिए, तो वो भी एक साइन होगा कि लोग उसको भी गाली देंगे, वो तो बट नेचुरल है। वो सांप के जो बड़े चहेते हो रहे थे ना इस मैच के बाद कि यार वो होता तो ये होता, अरे भाई क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो होता तो ऐसा होता, शायद उससे बदतर भी हो सकता था। फिर बारी आती है हमारे डिफेंस की, आहा, ऐसा डिफेंस, मतलब मैं JD वाला डिफेंस और इस डिफेंस का अगर कंपैरिजन करूं, इनको मैं कंपेयर भी करूं तो मुझे सजा हो जानी चाहिए, मुझे काला पानी की सजा दिला दो। लेकिन ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, जो वो डिफेंस था वो पूरी कोशिश करता था कि कम से कम हम कुछ भी करें लेकिन गोल पड़ने नहीं देंगे, शॉट को अंदर घुसने नहीं देंगे बॉक्स में। ये अच्छा गोल हो गया, चलो ठीक है कोशिश करते हैं, नहीं नहीं फिर गोल हो गया, कोई नहीं थोड़ी कोशिश करते हैं, क्या हो गया। और सबसे बड़ा आदमी, मतलब मैं इस बंदे को है ना लिटरली मैं है ना एक अवार्ड देके सीरियसली इस क्लब से जाने के लिए बोलना चाहता हूँ, वो है मार्कोस अलोंसो। भाई साहब, मार्कोस अलोंसो भाई, तुम पे ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग बहुत अच्छे से सूट करता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो तो शुक्र है कि कॉन्टे के अंडर तुम बड़े हसीन तरीके से चल गए, वो भी एक सीजन, उसके बाद से तुम्हारी भी परतें खुलने लग गई, तभी उसको अलेक्सेंड्रो की याद आई कि लेना है, लेकिन नहीं ले पाए। यही चीज फिर नापोली, जब सारी नापोली से आया तो उसको भी लगने लग गई कि कहीं ना कहीं हिसार्ड को लेके मैं अस्पिलिक्वेटा को लेफ्ट बैक पे खिला लूंगा। जब वो चीज भी नहीं हुई तो यही चलता रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मतलब पहले गोल से, मैं बता रहा हूं, पहले गोल से अलोंसो की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे पूरे मैच में, लग ही नहीं रहा था बंदा खेलने को आया हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ बॉल आ गई, मैं रुक जाता हूँ। मतलब पहला गोल आप साफ साफ बता सकते हो कि लेफ्ट फ्लैंक से जिस तरीके से बर्नार्डो ने रन ली, फिर स्टर्लिंग ने उस बॉल को, मतलब उस पास को कलेक्ट करके गोल किया, उससे समझ में आता है कि ये इस पूरे गोल, अगर इस पूरे इन्फ्लक्स का, इस पूरे गोल की शुरुआत में अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल था तो वो मार्कोस अलोंसो था। मतलब मैं सीरियसली ये चीज जानता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ये मतलब होता ही नहीं है कि प्लेयर वो रहेगा, ऐसे कई क्लब्स में हो चुका है, इवन मैंने इस क्लब में भी देखा हुआ है। 2014 में डेविड लुइस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसको उसी साल PSG को 50 मिलियन में बेचा हुआ है। दो बात अलग है कि वापस आ गया ठीक है, बट वी नीड चेंज। मतलब आई एक्चुअली थिंक कि चेल्सी को समर में फुल बैक्स पे पैसा खर्चना पड़ेगा। हिस्सा आए तो आए या ना तो आए, हो भी सकता है कि आए, लेकिन ये चीज जो है लेफ्ट बैक सुधारना पड़ेगा, नहीं तो चेल्सी संकट में। फिर बारी आती है मिडफील्ड की, कॉन्टे को छोड़ के ना बार्कली में एफर्ट था ना जॉर्जिनियो में। जॉर्जिनियो को मैंने मतलब कई मैचेस में डिफेंड किया ये कहते हुए कि वो बंदा है ही नहीं डिफेंसिव यार, उसका काम ही है कि वो अटैक को कंस्ट्रक्ट करे, वो टीम को कंडक्ट करके पासिंग करके वो चीज करे। वो चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है कि लोग उसको इसलिए लताड़ते हैं कि वो सारी के सिस्टम का मुख्य हिस्सा है तो उसको ये करो वो करो, पर यार कल जॉर्जिनियो ने हद से ज्यादा बुरा गेम खेला। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि चेल्सी ने कोशिश ही नहीं करी कि वो जनवरी में फैब्रेगास को रिप्लेस करने के लिए कोई अच्छा खिलाड़ी लेके आए। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको परेडेस की आस्किंग प्राइस से दिक्कत हो रही थी। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या, कहां ये टीम जा रही, कहां क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा इस टीम का। फिर बारी आती है हमारे अटैक की, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस दुख इस बात का है कि हडसन अडोई को इस मैच में चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि पेड्रो ने राइट विंग से कुछ खास काम नहीं किया। हाँ, इतना बोलूंगा कि हजार्ड और हिग्वाइन ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी धरी की धरी रह गई थी। पोजेशन का हम क्या करेंगे जब मैच हार रहे। और अब बारी आती है उन लोगों के बारे में बात करने की जो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा तरीके से जिम्मेदार है। सबसे पहले तो कोच मॉरिसियो सारी को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ सिलेक्शन उनकी ठीक नहीं है। उस वजह से हम कई बार भुगत चुके हैं, पहले भी भुगते हैं, अभी भी भुगते हैं। जब तक वो चीज वो नहीं समझेंगे तब तक इस टीम का कुछ होना ही नहीं है। अलोंसो को बिठाना जरूरी है, क्योंकि वो बंदा अच्छे से अच्छे मैच की मटिया पलीत कर देता है। अब वो करो, हडसन ओडोई को चांस दो, कहीं ना कहीं वो एक कन्विंस तो होगा कि बंदा कि यार हाँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ खेलने के लिए कुछ वजह है कि मैं चेल्सी में रुकूं, मेरा फ्यूचर है। वो चीज हो तो कहीं ना कहीं मौका तो दो। और एमर्सन, मैं ये नहीं कहता हूं कि एमर्सन इतना बुरा है या जैसा भी है, लेकिन वो है अच्छा। मैं अलोंसो से 10 गुना बेहतर बंदा वो एज अ प्लेयर है। एज अ प्लेयर ही इज अ ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट ऑन द लेफ्ट बैक रादर देन अलोंसो, और ये बात सब ने देखी भी है। और आखिर में मैं सबसे बड़े अगर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही है। समझ ही नहीं आता इस बोर्ड को क्या होता है। मतलब अगर आप एक चीज देखो, आयाक्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। आयाक्स उन क्लब्स में से जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स को अपनी अकेडमी से बनाया है, और वो उनको रख नहीं पाए क्योंकि यार आयाक्स का स्टैचर बाकी क्लब्स के मुकाबले उतना बड़ा नहीं था। अगर आप अभी की उनकी रीसेंट टीम देखें जो अभी इस सीजन की एरिक टेन हाग के अंडर उनकी है, जिसमें उनके दो बड़े बड़े यंग प्रोस्पेक्ट्स फ्रैंकी डी योंग और मथायस डेलिक्ट, निकोला टैगलेफिको, हकीम ज़ेक, और मतलब उनका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था। अगर आप उनकी टीम को, अगर आप उस टीम को अगर 5-6 साल पहले देखते तो वो टीम बहुत ही वल्नरेबल थी। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट होती है, स्काउटिंग सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, एक फ्यूचर विजन होता है। यूवेंटस को आप देख लो, यूवेंटस माना बुड्ढे प्लेयर लेती है, वो थोड़े एज्ड प्लेयर लेती है। मैं रोनाल्डो की बात नहीं कर रहा हूँ, रोनाल्डो के बारे में मैंने कुछ उल्टा बोला तो मुझे गाली पड़ेगी, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका विजन देखो। वो फ्री ट्रांसफर में भी अच्छे अच्छे प्लेयर लाने का दम रखते हैं। उन्होंने पॉग्बा लिया, उन्होंने डैनी अल्वेस को लिया, उन्होंने एमरे चान को लिया, और अभी शायद रैमसी को भी लेने वाले। हर क्लब की एक विजन होती है। आर्सेनल तक के पास अगर मैं फॉरवर्ड्स की बात करूं तो बहुत बेहतरीन फॉरवर्ड्स ओबामियांग और लाकाजेट हैं। लेकिन लिवरपूल का भी हम कहें, लिवरपूल का बोर्ड चाहे एक सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, वो क्लॉप को वो उसको जो प्लेयर चाहिए होता है वो दिला देते हैं। वर्जिल वैन डाइक परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूं इस विंडो चेल्सी ने अपने आप को ही बेहतर किया, लेकिन उन्हें और करना चाहिए था। और मरीना को ये बात समझनी चाहिए कि जो हेड कोच को चीजें चाहिए, जो उसको प्लेयर अपने सिस्टम में चलाने वाले चाहिए, वो आने चाहिए। वरना तो भैया इस टीम का कुछ हो नहीं सकता है। पहले स्टेडियम का काम रुक गया, ऊपर से रोमन का पासपोर्ट का चक्कर, और पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा। क्योंकि इस सीजन टॉप फोर में आना जरूरी है और चैंपियंस लीग फुटबॉल जरूरी है, तभी हम ये कह सकते हैं ईडन हजार्ड चेल्सी में रुकेंगे, नहीं तो भूल जाओ। थैंक यू मुझे सहन करने के लिए, मेरे गुस्से को सहन करने के लिए। ये मेरे अंदर की भड़ास थी जो मैं निकालना चाहता था, एंड इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू, जय चेल्सी।